आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों देवो भव के मंत्र के साथ सरकारी सेवाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल उज्जैन में महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास योजना सहित विभिन्न ग्रामीण परियोजनाओं की समीक्षा की। और हाईकोर्ट में भोशाला मामले पर सुनवाई हुई, अब सोमवार से इस पर रोजाना अंतिम बहस सुनी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तेजी से बदलती आकांक्षाओं के लिए एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की आवश्यकता है जो न केवल कुशल हो बल्कि नागरिक केंद्रित भी हो। उन्होंने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित करते हुए आज एक वीडियो संदेश में ये बात कही। वर्तमान शासन को नागरिक देवो भव के मंत्र से निर्देशित बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसका स्पष्ट उद्देश्य सार्वजनिक सेवा को अधिक सक्षम, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। अब शासन को सिटीजन सेंट्रिक बनाकर एक नई पहचान दी जा रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी संस्थाओं की क्षमता में निहित होती है और उस क्षमता को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उज्जैन में कल से 5 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित इस 3 दिवसीय समागम में प्राचीन भारतीय कालगणना और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान पर वैश्विक मंथन होगा। इस अवसर पर 15 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण भी किया जाएगा। सम्मेलन में इसरो, DRDO और IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे, जिसका उद्देश्य उज्जैन को पुनः वैश्विक टाइम स्केल सेंटर के रूप में स्थापित करना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भव्य रोड शो कर भ्रष्टाचार और सुरक्षा के मुद्दों पर राज्य में परिवर्तन का आह्वान किया। इस बीच विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उधर असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सत्रा के विकेंद्रीकरण पर बल दिया। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर कार्बी आंगलोंग में अनुच्छेद 244A लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 152 क्षेत्रों में प्रथम चरण का मतदान 23 अप्रैल को सम्पन्न होगा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने इस साल मार्च में 22.64 अरब लेनदेन का आंकड़ा पार किया। वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी देते हुए नागरिकों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए धन्यवाद दिया और इसे जारी रखने का आग्रह किया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि विमानन संचालन की सुरक्षा और संरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नायडू ने कहा कि उड़ान संचालन की सुरक्षा के संबंध में हर देश सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत इन नीतियों, दिशा निर्देशों और नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि ये सारे सेफ्टी के संदर्भ में किस तरह से नॉर्म्स हो। एज ए कंट्री यू आर डिजाइन टू फॉलो ऑल दिस गाइडलाइंस एंड रूल्स, एंड खास करके जो वेदर के उसमें है सर, हम IMD की तरफ से वेदर को और अच्छी तरह हम प्रेडिक्ट करें। नई टेक्नोलॉजी भी आती है तो हम इन्वाइट करते हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी को हमारे एयरपोर्ट्स में लेके आए ताकि हम ठीक तरह से वेदर को हम प्रेडिक्ट कर पाए।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोकसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित सामान्य नियमों को विनियमित करना है। विधेयक में प्रावधान है कि महानिरीक्षक पद के कुल पदों में से 50% अतिरिक्त महानिदेशक रैंक के दो पदों में से 67% और विशेष महानिदेशक तथा महानिदेशक रैंक के सभी पद प्रतिनियुक्ति पर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जाए। बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि योजनाओं से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी राज्यों के साथ साझा की जाए ताकि केंद्र और राज्य मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर सके। एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया ने पूर्व महिला क्रिकेटर्स के लिए विशेष मासिक वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत बीसीसीआई से सहायता न पाने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियों को हर महीने 12,500 रूपए और घरेलू क्रिकेटर्स को 10,000 रूपए तक की पेंशन प्रदान की जाएगी। 75 साल से अधिक आयु के खिलाड़ियों को 7,500 रूपए अतिरिक्त मिलेंगे। साथ ही चंद्रकांत पंडित के कार्यकाल को बतौर क्रिकेट निदेशक विस्तार दिया गया है और अंपायरों तथा स्कोरों का मानदेय भी गया है। प्रदेश में जनगणना को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। राज्य में करीब 3 करोड़ भवनों का गणना के लिए लगभग 1,90,000 प्रगणकों को मैदान में उतारने की रूपरेखा तैयार की गई है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें नागरिक 16 अप्रैल से स्वयं भी ऑनलाइन जानकारी दर्ज करा सकेंगे। आकाशवाणी भोपाल से विशेष बातचीत में जनगणना निदेशक श्री कार्तिक गोयल ने नागरिकों से अपील की है कि वे सही और सुरक्षित जानकारी साझा करें, किसी भी प्रकार की साइबर अपराध से सावधान रहें।
नॉर्मल डिजिटल सावधानी बरतते हैं, वो बरतनी है। सबसे पहला तो ये कि किसी प्रकार का पेमेंट भारत की जनगणना में कतई नहीं लगेगा। दूसरा, कोई भी लिंक आएगा उसको क्लिक नहीं करना है। हम आपको कोई क्लिकेबल लिंक मैसेज के माध्यम से नहीं भेजने वाले हैं। और तीसरा, किसी प्रकार के फाइल मत डाउनलोड करिए अपने किसी भी मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर। ये 3 सावधानियां हमें हर साइबर क्राइम के लिए बरतनी होती है, वो आपको इसमें भी बरतनी होगी। जनगणना का कोई भी प्रगणक आपके पास जब आएगा, वो आपके पास अपना एक सरकारी फोटो युक्त आईडी खाएगा, उसी को आप अपने पास आने देंगे और उसको से जानकारी साझा करेंगे।
प्रदेश भर में आज हनुमान जयंती का पर्व श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के खेड़ापति मंदिर से लेकर इंदौर के रणजीत हनुमान तक मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस पावन अवसर पर ग्वालियर में भगवान का चांदी की पोशाक से तो रतलाम में स्वर्ण श्रृंगार किया गया। विशेष आकर्षण का केंद्र छतरपुर में अनावरित हुई 51 फीट की विशाल अष्टधातु प्रतिमा है, जिसे देखने के लिए प्रदेश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हस्त नक्षत्र और ध्रुव योग के शुभ संयोग में आज जगह जगह भंडारे और सुंदरकांड के पाठ आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल, राजगढ़, पन्ना, आगरमालवा, देवास, खंडवा, शहडोल, सीहोर सहित विभिन्न जिलों में हनुमान जयंती उत्साह के साथ मनाई जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में शववाहन की निशुल्क सुविधा प्रारंभ की गई है। ये सुविधा सभी शासकीय अस्पतालों में रोगी या दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को सुपुर्द कर निशुल्क उनके निवास स्थल तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभ हुई है। खंडवा में मिशन कर्मयोगी आईकॉट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में आज से 8 अप्रैल तक साधना सप्ताह मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत इस साल बड़ी संख्या में बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है। लॉटरी प्रक्रिया के जरिए करीब 1,06,000 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए हैं। देवास में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। नर्मदापुरम में ग्राम पंचायत गाजनपुर में नवांकुर संस्था जीवनदायिनी समाज सेवा समिति द्वारा राहगीरों के लिए जल मंदिर की स्थापना की गई। वहीं झाबुआ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। जिला अस्पताल में आधुनिक तकनीक के तहत लेप्रोस्कोपिक विधि से सफल ऑपरेशन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।